एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पहला मेजबान।
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। आज हम कला इतिहास यानी आर्ट हिस्ट्री की दुनिया में एक तरह से गोता लगा रहे हैं।
हाँ, और वो भी एक बहुत ही प्रभावशाली विचारक डैना आर्नल्ड और उनकी किताबों के जरिए।
बिल्कुल, खासतौर पर उनकी किताब आर्ट हिस्ट्री, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, और उनका एक और जो व्यापक काम है, आर्ट हिस्ट्री, क्रिटिकल फ्रेमवर्क्स एंड एवोल्यूशन ऑफ अ डिसिप्लिन। हम इन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे।
हाँ, और शायद कुछ लोग सोचे कि भाई कला इतिहास, आर्ट हिस्ट्री, ये आज हमारे लिए क्यों जरूरी है? मतलब पुरानी पेंटिंग्स या मूर्तियों की बात?
नहीं नहीं, बात सिर्फ वो नहीं है, असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। सवाल ये है कि हम अपने चारों ओर जो कुछ भी देखते हैं, तस्वीरें, डिजाइन, इमारतें, उन्हें हम देखते कैसे हैं?
सही। और उनका मतलब कैसे निकालते हैं? और ये कौन तय करता है कि क्या कला है, क्या महत्वपूर्ण है और क्या उतना महत्वपूर्ण नहीं है?
बिल्कुल, आप सोचिए, हम दिन भर कितनी छवियों, कितनी इमेजेस से घिरे रहते हैं, टीवी पर, विज्ञापनों में, फोन पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह।
हाँ, बात तो सही है।
तो डैना आर्नल्ड का काम हमें इन सबको समझने का एक नज़रिया देता है, एक फ्रेमवर्क। वो हमें सिखाती हैं कि आर्ट हिस्ट्री सिर्फ डेट्स और नाम रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है।
अच्छा, तो फिर क्या है?
ये असल में एक तरह की क्रिटिकल थिंकिंग है, आलोचनात्मक सोच विकसित करने का तरीका। ये हमें सवाल पूछना सिखाता है, न सिर्फ कला के बारे में, बल्कि उस तरीके के बारे में भी जिससे हमें कला की कहानी या कहानियां सुनाई जाती हैं।
ये दिलचस्प पॉइंट है। तो चलिए पहले डैना आर्नल्ड को थोड़ा जान लेते हैं। मतलब कौन है ये और उनका नजरिया इतना खास क्यों माना जाता है?
देखिए, वो एक जानी मानी अकादमिक और इतिहासकार हैं। उनकी स्पेशलाइजेशन खास तौर पर वास्तुकला के इतिहास और सिद्धांत, मतलब आर्किटेक्चुरल हिस्ट्री एंड थियोरी में है। मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रही हैं और कई बड़े संस्थानों से भी जुड़ी रही हैं।
लेकिन सिर्फ वास्तुकला का ज्ञान ही उनकी खासियत नहीं है, जैसा आप कह रही थीं।
नहीं, बिल्कुल नहीं। जो बात उन्हें वाकई अलग बनाती है, वो है उनका इतिहास लेखन यानी हिस्टोरियोग्राफी पर फोकस। मतलब वो सिर्फ ये नहीं पढ़ाती कि इतिहास में क्या हुआ, बल्कि ये भी कि इतिहास लिखा कैसे जाता है।
अच्छा, मतलब इतिहास लिखने के प्रोसेस पर ही उनका ध्यान है।
हाँ, इससे उन्हें एक बहुत पैनी, एक क्रिटिकल दृष्टि मिलती है। वो सिर्फ कला की कहानी नहीं सुनाती, वो ये विश्लेषण करती हैं कि ये कहानी बनी कैसे, किसने लिखी, इसमें किसकी आवाज शामिल हुई और किसकी रह गई, किसे जानबूझकर या अनजाने में बाहर रखा गया।
समझ गया, मतलब वो कला को सिर्फ, जैसे कहते हैं ना, आर्ट फॉर आर्ट सेक, वैसे नहीं देखती। वो उसे समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, इन सब के ताने बाने का एक हिस्सा मानती है।
एग्जैक्टली, और उनका काम नारीवादी दृष्टिकोण और समावेशी सोच, इंक्लूसिविटी पर भी बहुत जोर देता है, जो आज के दौर में मुझे लगता है बहुत ही रेलेवेंट है। वो पूछती हैं कि इतिहास लिखते समय हमने किसे हीरो बनाया, किसकी कहानी को अहमियत दी और किसे भुला दिया गया।
बिल्कुल। तो अब अगर उनकी किताबों पर आएं, खासकर अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन पर, आपने कहा कि ये कोई टिपिकल गाइड बुक नहीं है।
हाँ, बिल्कुल नहीं। इसमें आपको ऐसे लिस्ट नहीं मिलेगी कि अच्छा, ये हैं टॉप 10 पेंटर और ये हैं उनकी बेस्ट पेंटिंग्स। वैसी उम्मीद ना रखें।
तो फिर फोकस किस पर है? ये किताब टाइमलाइन या महान कलाकारों की कहानियों का कलेक्शन नहीं है, तो है क्या?
देखिए, ये किताब इस बात पर ज्यादा ध्यान देती है कि कला इतिहास यानी आर्ट हिस्ट्री एक सब्जेक्ट के तौर पर एक अकादमिक अनुशासन के रूप में काम कैसे करता है। आर्नल्ड का जो मेन आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि आर्ट हिस्ट्री कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस है, कोई फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव सच नहीं है। ये तो एक लगातार बदलता हुआ, इवॉल्व होता हुआ फील्ड है, जिसे हमारी संस्कृति, हमारी राजनीति, हमारा समाज, हमारा पूरा कॉन्टेक्स्ट शेप देता है।
अच्छा,
और वो एक बुनियादी सवाल उठाती है ना, कि हम कला को देखते कैसे हैं, उसका मतलब कैसे निकालते हैं,
हाँ,
और ये भी कि कौन तय करता है कि आर्ट की दुनिया में क्या इम्पोर्टेंट है, क्या वैल्यूएबल है, जिसे हम कला का कैनन कहते हैं। मतलब वो लिस्ट जिसमें महान मानी जाने वाली कलाकृतियां शामिल होती हैं, वो लिस्ट आखिर बनी कैसे, कौन बना रहा है उसे।
और उनका क्या कहना है इस पर?
आर्नल्ड बताती हैं कि ये कैनन असल में एक हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन है, इसे इतिहास के एक खास मोड़ पर बनाया गया है और इसे ज्यादातर पश्चिमी पुरुष नजरिए ने कंट्रोल किया है।
तो निचोड़ ये हुआ कि किताब का मकसद हमें फैक्ट्स रटाना नहीं है।
बिल्कुल नहीं, मकसद है हमें वो क्रिटिकल टूल्स देना, वो सोचने का तरीका देना, जिससे हम किसी भी विजुअल चीज का, चाहे वो म्यूजियम में रखी कोई सदियों पुरानी पेंटिंग हो या आज का कोई एड या कोई मीम,
हाँ हाँ कुछ भी
कुछ भी, हम उसका विश्लेषण कर सकें। ये हमें सिखाती है कि कैसे सिर्फ देखना नहीं है बल्कि सवाल करना है, कैसे देखना है, क्या सवाल पूछने हैं, और कला और हमारी जिंदगी के बीच का जो कॉम्प्लेक्स रिश्ता है उसे कैसे समझना है।
चलिए, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब जरा आर्नल्ड के विचारों में और गहराई से उतरते हैं। आपने कहा था कि अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन की संरचना को कुछ हिस्सों में बांटकर समझ सकते हैं। पहला हिस्सा क्या है?
हाँ, पहला हिस्सा बात करता है कि आर्ट हिस्ट्री शुरू कैसे हुई, कैसे ये कलाकारों की जीवनियों से इतिहास बनने तक का सफर तय करती है।
जीवनियां जैसे?
जैसे 15वीं सदी में इटली के जॉर्जियो वसारी, उन्होंने एक बहुत फेमस किताब लिखी, लाइव्स ऑफ द मोस्ट एक्सेलेंट पेंटर्स स्कल्प्टर्स एंड आर्किटेक्ट्स।
नाम से ही जाहिर है।
हाँ, लाइव्स, जीवनियां।
बिल्कुल।
इसमें उन्होंने कलाकारों को लगभग देवता जैसा, डिवाइन टैलेंट वाला जीनियस दिखाया और खासकर फ्लोरेंस और रोम को कला का केंद्र बना दिया।
और उन्होंने सिर्फ जीवनियां भी लिखी, उन्होंने एक एक तरह की कहानी गढ़ दी है ना?
हाँ बिल्कुल, उन्होंने कला के विकास को इंसान की उम्र की तरह देखा, जन्म, फिर युवावस्था और फिर परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, जहां माइकल एंजेलो जैसे कलाकार एकदम शिखर पर थे।
उनके हिसाब से
अच्छा, ये तो बड़ा लीनियर तरीका है सोचने का। हाँ, और इसी सोच ने एक कैनन बनाने की नींव रखी, मतलब महान कलाकृतियों की एक लिस्ट। ये आइडिया कि कला बस एक सीधी रेखा में लगातार बेहतर होती जा रही है, प्रगति कर रही है।
लेकिन फिर इसमें बदलाव आया।
हाँ, फिर 18वीं सदी में विंकलमैन जैसे विचारक आए, उन्होंने इस नज़रिए को थोड़ा बदला। उन्होंने जीवनी से ज़्यादा शैली यानी स्टाइल पर फोकस किया। उन्होंने प्राचीन ग्रीक कला को स्टडी किया और उसे कला का सबसे शुद्ध, सबसे आइडियल रूप मान लिया।
अच्छा, तो एक नया बेंचमार्क सेट हो गया।
हाँ बिल्कुल, इससे हुआ ये कि एक नई तरह की रैंकिंग बन गई, एक पदानुक्रम या हायरार्की, जिसमें ग्रीक कला सबसे ऊपर थी, बाकी सबको उसी के मुकाबले में देखा जाने लगा।
और आनल यही हमें रोकती है ना? वो कहती है कि ये जो पूरी बुनियाद है।
एग्जैक्टली, वो जोर देती हैं कि ये जो पारंपरिक नींव है, ये जो महान कला का आइडिया है, ये कोई नेचुरल या हमेशा से मौजूद सच्चाई नहीं है, ये एक खास समय में खास लोगों द्वारा अपने नजरिए से बनाई गई एक रचना है, एक कंस्ट्रक्शन,
और इसलिए इसे चुनौती दी जा सकती है।
बिल्कुल,
इस पर सवाल उठाए जा सकते हैं।
ठीक है, तो ये तो हुई शुरुआत। इसके बाद दूसरा अहम पड़ाव क्या आता है? आपने कहा था रूप, शैली और बिना नाम का कला इतिहास, ये क्या है?
हाँ, ये 20वीं सदी की शुरुआत की बात है। कुछ कला इतिहासकारों ने सोचा कि भाई, कलाकार की जिंदगी या कहानी से ज्यादा जरूरी है कि कलाकृति खुद कैसी दिखती है, उसका फॉर्म कैसा है।
अच्छा,
मतलब ऑट ऑब्जेक्ट पर फोकस।
हाँ, यहीं से रूपवाद यानी फॉर्मलिज्म का विचार आया। इसमें सारा ध्यान कलाकृति के विजुअल एलिमेंट्स पर होता है, लाइनें कैसी हैं, रंग कैसे इस्तेमाल हुए हैं, पूरी रचना या कॉम्पोजिशन कैसी है। कॉन्टेक्स्ट को एक तरह से साइड में रख दिया।
और इसमें कोई खास नाम?
इसमें हेनरिक वॉल्फ्लिन का नाम बहुत अहम है। उन्होंने अलग अलग आर्ट स्टाइल्स की तुलना करने के लिए बड़े दिलचस्प तरीके निकाले, जैसे उन्होंने रेनेसा आर्ट और बरोक आर्ट की तुलना करने के लिए कुछ जोड़े बनाए, जैसे लीनियर वर्सेस पेंटली या प्लेन वर्सेस रिसेशन।
ये तो काफी टेक्निकल लग रहा है।
हाँ थोड़ा है। उनका मानना था कि कला की शैलियां एक तरह के अंदरूनी तर्क से लगभग वैज्ञानिक नियमों की तरह बदलती हैं।
और इसी से जुड़ा वो बिना नाम का कला इतिहास वाला आइडिया है।
हाँ, उसका मतलब ये था कि कला में जो बदलाव आते हैं वो किसी एक महान जीनियस कलाकार की वजह से नहीं आते, बल्कि वो तो हमारे देखने के तरीके में जो बड़े ऐतिहासिक बदलाव होते हैं उनका हिस्सा हैं। जैसे कि ये बदलाव कलाकारों से ज्यादा उस समय की आंख पर, विजुअल परसेप्शन पर निर्भर करते हैं।
लेकिन इस तरीके की भी अपनी कमियां होंगी।
हाँ बिल्कुल, इसकी सीमाएं साफ थीं। ये हमें बता सकता है कि कोई पेंटिंग कैसी दिखती है, पर यह अक्सर ये नहीं समझा पाता कि वो वैसी क्यों है या उसका उस समाज के लिए क्या मतलब था।
मतलब सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक अर्थ कहीं ना कहीं छूट जाते हैं।
हाँ, इससे एक जरूरी सवाल उठता है क्या हम कला को उसके बनाने वाले, उसके समाज, उसके मकसद से पूरी तरह काट कर समझ सकते हैं? शायद नहीं।
बिल्कुल, और यहीं से शायद तीसरा बड़ा खंड शुरू होता है ना, संदर्भ, अर्थ और व्याख्या।
सही। 20वीं सदी में जैसे जैसे फॉर्मलिज्म की सीमाएं साफ हुईं, कई नए तरीके सामने आए जो कला को उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके संदर्भ में समझने पर जोर देते थे।
जैसे कि?
इनमें से एक बहुत प्रभावशाली तरीका है आइकोनोग्राफी और आइकनोलॉजी। इसे अर्विन पैनोफ्स्की ने खास तौर पर विकसित किया।
आइकनो क्या?
आइकनोग्राफी और आइकनोलॉजी। आसान शब्दों में कहें तो ये कला में इस्तेमाल हुए सिंबल्स यानी प्रतीकों और थीम्स यानी विषयों का अध्ययन है। पैनोफ्स्की ने इसे समझने के लिए तीन लेवल का एक मॉडल दिया।
अच्छा, तीन लेवल?
हाँ, पहला लेवल आप सतह पर क्या देखते हैं, बिल्कुल बेसिक, जैसे एक औरत है और एक पहिया है। दूसरा लेवल, ये प्रतीक क्या दर्शाता है, मतलब इसका पारंपरिक अर्थ क्या है, जैसे अच्छा ये संत कैथरीन है जिन्हें पहिए से टॉर्चर किया गया था। ये हो गई आइकनोग्राफी।
ठीक है,
और तीसरा?
तीसरा लेवल है आइकनोलॉजी। ये सबसे गहरा है, ये पूछता है ये प्रतीक, ये कहानी उस खास संस्कृति और समय के बारे में क्या गहरी बात बताती है जहां ये कलाकृति बनी थी। जैसे उस समाज में शहादत या विश्वास का क्या महत्व था, ये उस चीज के कल्चरल सिम्टम्स को पढ़ने जैसा है।
हाँ, ये तो काफी डीप एनालिसिस है।
हाँ, फिर एक और मजबूत धारा आई, कला का सामाजिक इतिहास,
सोशल हिस्ट्री ऑफ आर्ट।
इस पर मार्क्सवादी विचारों का काफी असर रहा।
अच्छा, मार्क्सवाद का आर्ट हिस्ट्री में क्या रोल? ये पूछता है ये आर्टवर्क किसने बनवाया, किसके पैसे से बना, इसे कौन लोग देखने वाले थे, उनकी क्लास क्या थी, क्या ये किसी खास वर्ग या विचारधारा को मजबूत करने के लिए बनाई गई थी। ये कला को सीधे सीधे समाज के पावर स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स से जोड़कर देखता है।
मतलब किसकी कला किसके लिए?
बिल्कुल। और फिर बेशक नारीवाद यानी फेमिनिज्म का जबरदस्त प्रभाव पड़ा। लिंडा नॉचलिन जैसी कला इतिहासकारों ने 1970s के दशक में एक बहुत ही बुनियादी और जरूरी सवाल पूछा, इतिहास में महान महिला कलाकार क्यों नहीं हुई।
हाँ, ये सवाल तो सोचने वाला है।
उन्होंने तर्क दिया कि ऐसा नहीं कि महिलाओं में टैलेंट नहीं था, बल्कि सामाजिक और संस्थागत ढांचे ने, इंस्टीट्यूशंस ने उन्हें मौके ही नहीं दिए। उन्होंने आर्ट की दुनिया में पुरुष प्रधान नजरिए, जिसे मेल गेज कहते हैं, उसकी आलोचना की और उन अनगिनत महिला कलाकारों को खोजना शुरू किया जिन्हें इतिहास ने पूरी तरह भुला दिया था।
ये बहुत जरूरी काम था। और इसके अलावा?
इसी तरह पोस्ट कॉलोनियल यानी उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण सामने आया। इसने कला इतिहास के यूरोसेंट्रिक होने पर, मतलब यूरोप को ही केंद्र मानने पर सवाल उठाए, क्यों हमेशा यूरोपियन आर्ट को ही स्टैंडर्ड माना जाए, क्यों गैर पश्चिमी कला को समझने के लिए भी वेस्टर्न पैमाने ही इस्तेमाल किए जाएं?
सही बात है, हर जगह का अपना कॉन्टेक्स्ट होता है।
बिल्कुल। इस अप्रोच ने कहा कि हमें हर कल्चर की कला को उसके अपने संदर्भ, उसकी अपनी शर्तों और मूल्यों के आधार पर समझना चाहिए।
ठीक है, तो हमने जीवनियों से शुरुआत की, फिर फॉर्मलिज्म पर आए, और फिर कॉन्टेक्स्ट और अलग अलग अप्रोचेस जैसे आइकनोग्राफी, सोशल हिस्ट्री, फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म को समझा। अब चौथा अहम पहलू क्या है?
चौथा अहम पहलू जिस पर आर्नल्ड ध्यान दिलाती हैं, वो है कला इतिहास की वस्तु, मतलब आर्ट ऑब्जेक्ट इट्सेल्फ। ये याद रखना कि कलाकृति सिर्फ एक आइडिया या एक इमेज नहीं है, वो एक फिजिकल चीज भी है, एक भौतिक वस्तु।
इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब है कि हमें ये भी देखना होगा कि वो बनी कैसे, किस मटेरियल से बनी, उसका साइज क्या है, उसे किसने पैसे दिए बनवाने के लिए, उसे किसने खरीदा, उसे कहाँ डिस्प्ले किया गया, उसे कैसे प्रिजर्व किया गया। ये सब चीजें मायने रखती हैं।
हाँ, जैसे कि पेट्रोनेज यानी संरक्षण का रोल, बनवाने वाले का।
बिल्कुल। वो कौन था, कोई राजा, चर्च, अमीर व्यापारी या आज के जमाने में कोई बड़ी कॉर्पोरेशन? बनवाने वाले की पसंद, उसकी जरूरतें, उसकी आइडियोलॉजी, ये सब आर्टवर्क पर अपनी छाप छोड़ते हैं। कलाकार हमेशा पूरी तरह आजाद नहीं होता था, है ना, उसे अक्सर पेट्रन की इच्छाओं का ध्यान रखना पड़ता था।
सही है। और फिर आजकल आर्ट मार्केट का भी तो बहुत बड़ा रोल है।
ओ बिल्कुल, आर्ट मार्केट कैसे कला एक कमोडिटी बन जाती है। खरीदी बेची जाने वाली चीज, और ये चीज उसके मतलब और उसकी वैल्यू को कैसे बदल देती है, जिसे हम हाई आर्ट कहते हैं और जिसे क्राफ्ट कहकर शायद कमतर आंकते हैं, उनके बीच का फर्क अक्सर सिर्फ क्वालिटी का नहीं होता
बल्कि पैसे और सोशल स्टेटस का भी होता है। ऑक्शन हाउस, आर्ट गैलरियां, बड़े बड़े कलेक्टर्स, ये सब मिलकर तय करते हैं कि कौन सी कला कितनी इम्पोर्टेंट या वैल्यूएबल है।
और म्यूजियम की भूमिका को भी आनल जरूर डिस्कस करती होंगी। हाँ,
बिल्कुल।
आनल साफ कहती है कि म्यूजियम कोई न्यूट्रल स्पेस नहीं होता, वो कोई मासूम जगह नहीं है। वहाँ चीजों को कैसे रखा जाता है, किस ऑर्डर में रखा जाता है, उनके साथ क्या लेबल लगाया जाता है, कौन सी कहानी बताई जाती है जिसे क्यूरेटोरियल नैरेटिव कहते हैं, ये सब हमारे अनुभव को गढ़ता है।
मतलब म्यूजियम भी एक तरह की व्याख्या कर रहा होता है।
हाँ, अक्सर म्यूजियम चीजों को उनके असली कॉन्टेक्स्ट से, जैसे कोई मूर्ति मंदिर से, कोई पेंटिंग घर से निकाल कर एक सफेद दीवार पर टांग देते हैं और उन्हें कला का दर्जा दे देते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है, एक मतलब देने की कोशिश है।
ये सारे पॉइंट्स तो काफी सोचने पर मजबूर करते हैं। अब आर्नल्ड का पांचवा और आखिरी खंड किस बारे में है?
वो नई दिशाओं और ग्लोबल पर्सपेक्टिव पर बात करती हैं। ये बताती हैं कि आर्ट हिस्ट्री कोई रुकी हुई चीज नहीं है, ये लगातार बदल रहा है, अपने आप से सवाल कर रहा है और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है।
जैसे कि क्या नई चुनौतियां हैं
इसमें? एक बड़ी चुनौती है ग्लोबल आर्ट हिस्ट्री को सही मायने में डेवलप करना, यानी दुनिया भर की कलाओं को समझना बिना उन पर पश्चिमी चश्मे या कैटेगरीज थोपे। कैसे हम, मान लीजिए, चीन की, भारत की या अफ्रीका की कला को उनकी अपनी सांस्कृतिक लॉजिक और इतिहास के नजरिए से समझें?
ये तो मुश्किल काम होगा।
मुश्किल है लेकिन जरूरी है। इसमें अलग अलग संस्कृतियों की तुलना करना और हर एक के अपने फ्रेमवर्क को अहमियत देना जरूरी है।
और कोई नई दिशा?
हाँ, एक और बहुत अहम कॉन्सेप्ट है विजुअल कल्चर का, दृश्य संस्कृति। ये कहता है कि आर्ट हिस्ट्री में हमने जो एनालिसिस करने के तरीके सीखे हैं, जैसे सिंबल्स कैसे काम करते हैं, कॉन्टेक्स्ट क्यों जरूरी है, पावर कैसे दिखती है, इन्हें सिर्फ म्यूजियम की चीजों तक सीमित क्यों रखें?
मतलब
इनका इस्तेमाल हम आज के विज्ञापनों, फिल्मों, न्यूज की तस्वीरों, सोशल मीडिया पोस्ट, यहाँ तक कि साइंटिफिक इमेजरी को समझने के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सब मिलकर हमारी दुनिया की समझ बनाते हैं, हमारी विजुअल दुनिया।
अरे हाँ, ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है।
बिल्कुल। और हाँ, डिजिटल युग का असर तो है ही। इंटरनेट ने कला तक हमारी पहुंच बहुत आसान बना दी है। हम घर बैठे दुनिया भर के म्यूजियम घूम सकते हैं वर्चुअली।
लेकिन क्या स्क्रीन पर देखना असली चीज देखने जैसा है?
यही तो सवाल है। ये एक बहस का मुद्दा है। क्या वो फिजिकल प्रेजेंस, वो ऑरा महसूस होता है? शायद नहीं। लेकिन दूसरी तरफ इसने जानकारी और एक्सेस को डेमोक्रेटाइज भी किया है, साथ ही नई तकनीकें रिसर्च करने, कला को सहेजने और उसे पेश करने के तरीकों को भी बदल रही हैं।
तो ये सारी बातें सुन के कुछ मुख्य विषय या टेकअवेज क्या बनते हैं?
है, वो कोई आसमानी चीज नहीं है, उसे इंसानों ने बनाया है, उसकी एक कंस्ट्रक्टेड नेचर है, इसे खास समयों पर खास नजरियों से खास मकसदों के लिए घड़ा गया है।
मतलब इसे ज्यों का त्यों मान लेने की जरूरत नहीं।
बिल्कुल। दूसरा, इसी से जुड़ा मुद्दा है शक्ति और बहिष्करण का, पावर एंड एक्सक्लूजन। पारंपरिक रूप से ये फील्ड ज्यादातर पश्चिमी श्वेत पुरुष विद्वानों ने डोमिनेट किया है,
जिसका नतीजा ये हुआ कि महिलाओं, नॉन वेस्टर्न कल्चर्स या आम लोगों की कला को अक्सर हाशिए पर रखा गया।
हाँ, या कमतर आंका गया। इसे पहचानना और ज्यादा समावेशी, ज्यादा सच्ची कहानियां कहना आज बहुत जरूरी है। हम अपने देश में भी ये देख सकते हैं ना, कैसे कभी कभी कुछ कला रूपों को क्लासिकल कहकर ज्यादा सम्मान मिलता है और कुछ को फोक या ट्राइबल कहकर शायद उतना नहीं।
सही कहा। तीसरा पॉइंट क्या होगा?
तीसरा है मेथोडोलॉजी का विकास, एवोल्यूशन ऑफ मेथोडोलॉजिकल अप्रोचेस। आर्ट हिस्ट्री सिर्फ स्टाइल पहचानने तक ही नहीं रुकी, इसने सोशियोलॉजी, फेमिनिज्म, साइकोलॉजी, पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज जैसे कई दूसरे फील्ड से सीखा है और खुद को बेहतर बनाया है। ये दिखाता है कि ये एक जिंदा डायनामिक विषय है।
चौथा पॉइंट शायद कॉन्टेक्स्ट की अहमियत है।
हाँ बिल्कुल, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग। किसी आर्टवर्क को उसके समाज, उसके समय, उसके बनाने के मकसद से अलग करके पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। शायद यूनिवर्सल आर्टिस्टिक वैल्यू जैसी कोई चीज होती ही नहीं। हर कल्चर अपने तरीके से दुनिया को देखता है और उसे अपनी कला में दिखाता है।
हमें दूसरों की कला को उनके ही नजरिए से समझने की कोशिश करनी चाहिए।
जैसे हमारे अपने त्योहारों या रीति रिवाजों से जुड़ी कला को ही लें, उसका असली मतलब तो उसके संदर्भ से ही जुड़ा है ना?
बिल्कुल।
और आखिर में एक उम्मीद की किरण है आर्ट हिस्ट्री के डेमोक्रेटाइजेशन की, लोकतंत्रीकरण। डिजिटल तकनीक, ज्यादा ओपन माइंडेड स्कॉलरशिप और अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले स्कॉलर्स की वजह से अब ये विषय ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है, ज्यादा आवाजें सुनी जा रही हैं, ये एक पॉजिटिव बदलाव है।
ये सब बातें वाकई सोचने लायक हैं। अनिल की किताबों से कुछ ऐसे विचार भी होंगे जो खासतौर पर याद रह जाते हैं, कोई कोट्स या आइडियाज?
हाँ, कई हैं। सीधे कोट्स शायद ना हो, पर उनके तर्कों का सार इन विचारों में झलकता है। पहला विचार कुछ ऐसा है जिसे मैं अपने शब्दों में कहूं तो, कला इतिहास सिर्फ कला की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात की कहानी है कि हमने कला की कहानी को कैसे सुनाना चुना है।
मतलब इतिहास लिखना एक एक्टिव चॉइस है।
हाँ। दूसरा विचार, जब भी हम कुछ देखते हैं तो हम अनजाने में कुछ और चीजों को नजरअंदाज भी कर रहे होते हैं। एवरी एक्ट ऑफ लुकिंग इज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ नॉट लुकिंग।
ये तो बहुत गहरी बात है, मतलब हमारा देखना कभी पूरी तरह न्यूट्रल नहीं होता।
सही। तीसरा, म्यूजियम या आर्ट गैलरी कोई खाली या मासूम जगह नहीं है, वो शक्तिशाली सांस्कृतिक संस्थान है जो तय करते हैं कि हम कला को कैसे देखें और उसे क्या महत्व दें।
ये हमें याद दिलाता है कि इंस्टीट्यूशंस हमारे नजरिए को कैसे शेप करते हैं।
चौथा, जो मुझे खास तौर पर पसंद है, क्या ये कला सुंदर है? ये पूछने से पहले शायद हमें पूछना चाहिए, ये कला दुनिया में क्या काम कर रही है? What work is this art doing?
हाँ, मतलब सुंदरता से आगे बढ़कर उसका फंक्शन, उसका रोल देखना, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक।
बिल्कुल। और एक और महत्वपूर्ण बात, सवाल ये नहीं है कि क्या आर्ट हिस्ट्री पूरी तरह ऑब्जेक्टिव हो सकता है, शायद नहीं हो सकता। असली सवाल ये है कि हम अपनी सब्जेक्टिविटी यानी अपने नजरिए को जिम्मेदार, खुला और समावेशी कैसे बना सकते हैं। हाउ कैन वी मेक आर सब्जेक्टिविटी प्रोडक्टिव एंड इंक्लूसिव।
ये बहुत प्रैक्टिकल सलाह है, अपनी सीमाओं को पहचानो और दूसरों को सुनो।
एग्जैक्टली।
जानने का आम इंसान के लिए
बहुत फायदा है। पहली बात तो ये कि हम जब म्यूजियम या आर्ट गैलरी जाते हैं तो ज्यादा स्मार्ट विजिटर बन सकते हैं। सिर्फ वाह कितना सुंदर है कहकर आगे बढ़ने के बजाय हम सवाल पूछ सकते हैं।
जैसे
यहाँ क्या कहानी बताई जा रही है, कौन सी कहानी मिसिंग है, ये चीजें यहाँ क्यों रखी हैं और इन्हें ऐसे ही क्यों सजाया गया है, क्यूरेटर हमसे क्या कहलवाना चाह रहा है।
अच्छा, और
दूसरी बात, ये हमें अपने चारों ओर की विजुअल कल्चर को डीकोड करने में मदद करता है। जब हम कोई एड देखते हैं या अखबार में कोई तस्वीर या सोशल मीडिया पर कोई वायरल इमेज, तो हम सोच सकते हैं इसमें कौन से सिंबल्स यूज हो रहे हैं, ये क्या आइडियोलॉजी बेच रहा है, ये जेंडर या क्लास को कैसे दिखा रहा है। ये एक तरह की मीडिया लिटरेसी है जो आज के जमाने में बहुत जरूरी है।
हाँ, ये तो बहुत जरूरी स्किल है। तीसरा,
हम अपने आसपास की इमारतों और शहरों को भी इस नजरिए से पढ़ना सीख सकते हैं। किसी पुराने सरकारी दफ्तर की भव्य इमारत क्या कहती है, किसी नए चमचमाते मॉल का डिजाइन क्या संदेश देता है, पब्लिक स्पेसेस कैसे डिजाइन की गई हैं, यह हमारे समाज के बारे में क्या बताता है।
मतलब अपने माहौल के प्रति ज्यादा जागरूक होना।
बिल्कुल। चौथा, ये हमें दुनिया को और उसमें मौजूद अलग अलग कल्चर्स को ज्यादा खुलेपन से देखने में मदद करता है। हम फॉरेन आर्ट या अपने ही देश की उन कलाओं को जिन्हें हम कम जानते हैं, वेस्टर्न या शहरी पैमानों से जज करने के बजाय उन्हें उनकी अपनी शर्तों पर समझने की कोशिश कर सकते हैं। इससे एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है।
और आखिरकार ये शायद कला के प्रति हमारे अपने पर्सनल लगाव को भी गहरा कर सकता है।
हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। जब हम सिर्फ सतह को नहीं बल्कि कला के पीछे की कहानियों, उसके बनने के कारणों, उसके सफर को समझते हैं, तो वो चीज हमारे लिए और भी ज्यादा मीनिंगफुल और ज्यादा रिच हो जाती है।
तो अगर हमें डैना आर्नल्ड के तान से एक सबसे बड़ा सबक लेना हो तो वो क्या होगा?
मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सबक ये है कि हमें हर तरह के ज्ञान को, चाहे वो कला हो, इतिहास हो या मीडिया से मिलने वाली जानकारी हो, क्रिटिकली देखना चाहिए। आंख मूंदकर कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। सवाल पूछने की हिम्मत और आदत डालनी चाहिए। ये पूछना चाहिए कि ये बात कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है और क्या कोई और कहानी, कोई और नजरिया भी मुमकिन है।
मेरे लिए सबसे सरप्राइजिंग बात यही थी कि कैसे आर्ट हिस्ट्री खुद एक कहानी है जिसे समय और शक्ति ने मिलकर गढ़ा है। ये सिर्फ पास्ट की चीजों का अध्ययन नहीं है, ये इस बात का अध्ययन है कि हम आज उन चीजों को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं और क्यों। ये हमें अपने ही बायसेस के प्रति ज्यादा अवेयर करता है।
और ये एहसास कि कला और संस्कृति कोई आइसोलेटेड चीजें नहीं है,
वो समाज, राजनीति और पावर स्ट्रक्चर्स में गहराई से जुड़ी हुई हैं। इसे समझने से हम अपने आसपास की दुनिया में कल्चरल एक्सप्रेशंस को बनाने, उन्हें इंटरप्रेट करने और उन्हें वैल्यू देने के बारे में ज्यादा मैच्योरिटी से, ज्यादा जिम्मेदारी से सोच सकते हैं। कला सिर्फ देखने की चीज नहीं रहती, सोचने की चीज बन जाती है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।